ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 8 वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप महानिदेशक गया प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला।
प्रधानमंत्री आवास योजना के आज 8 साल पूरे हो गए हैं। साल 2016 में आज ही के दिन ये योजना शुरू हुई थी और इसका मकसद था कि हमारे समाज के जो सबसे गरीब तबका है, जो सबसे जरूरतमंद तबका है, उसे उसका पक्का घर मिले। तो इन 8 सालों में इस योजना ने कैसी प्रगति की है, इस पर और चर्चा के लिए हमने आज आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में ग्रामीण विकास मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर जनरल गया प्रसाद जी को। गया प्रसाद जी, आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पिछले 8 साल कैसे रहे, कैसे ये योजना शुरू हुई थी और आज हम कहां पर पहुंच गए हैं, अगर हम बात करें आंकड़ों की।
मैं सबसे पहले आज आवास दिवस के मौके पर देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, विशेषकर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे और अर्बन क्षेत्रों में जो हमारे लाभार्थी हैं। मैं अगर ये कहूं कि पिछले 10 सालों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने, बेसिकली प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने 2015 में इसका सूत्रपात हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 नवंबर 2016 को आगरा उत्तर प्रदेश से इस योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लॉन्च किया था, उसी के उपलक्ष्य में आज 20 नवंबर 2024 को हम लोग 8वीं वर्षगांठ जो मना रहे हैं, आवास दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी के उसी दिन के लॉन्च के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। पिछले 10 वर्षों में अगर मैं कहूं कि जो घर भारत सरकार के अंतर्गत चलाई जा रही योजनाओं में बनाए गए हैं, वो 4 करोड़ से ज्यादा घर हैं, जिसमें से 3 करोड़ 44 लाख घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं और शेष घर जो है वो अर्बन एरिया में बनाए गए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाए गए हैं उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसका लॉन्च हमने बताया कि जो अप्रैल 2016 से शुरुआत जिसकी हुई है, उसके अंतर्गत 2 करोड़ 95 लाख का लक्ष्य था और उस लक्ष्य में सभी घर स्वीकृत किए जा चुके हैं और उसमें से 2 करोड़ 67 लाख घर आज की डेट में, आज की तिथि तक पूर्ण हो चुके हैं। साथ ही हमने पिछले 10 सालों में जो पूर्ववर्ती योजना थी, जिसको इंदिरा आवास योजना कहते हैं, उसके तहत जो 77 लाख घर हमने बनाए हैं जो अपूर्ण थे 2014 से पहले, तो 2014 के पहले जो अपूर्ण घर थे उनको भी पिछले 10 सालों में हमने बनाया है। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ 44 लाख घर हमने पिछले 10 साल में बनाए हैं।
तो जैसा सरकार कहती है और प्रधानमंत्री ने भी कई बार इसका जिक्र किया है कि एक मकान किसी गरीब को देना केवल एक मकान देना नहीं है, बल्कि उसके जीवन को एक आत्मसम्मान देना, एक स्थायित्व देना और एक उम्मीद देना, तो आप क्या कहेंगे इस पर?
ये पूर्व की जो योजनाएं थी घर देने की, उनसे ये योजना इसीलिए भिन्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो या प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन हो, कि हम लोग केवल मकान नहीं दे रहे हैं, मकान बल्कि मैं मकान नहीं कहूंगा, हम घर दे रहे हैं। और घर इसलिए दे रहे हैं कि घर के साथ जो वित्तीय सहायता दे रहे हैं उसके साथ हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनके लिए जीवन यापन को सुखमय बनाने के लिए और कौन कौन सी आधारभूत जरूरतें हैं, जैसे उसे घर देने के साथ साथ उसके पानी का कनेक्शन दिया जाना चाहिए, उसे बिजली का कनेक्शन दिया जाना चाहिए, उसको जो है रसोई गैस दिया जाना चाहिए, साथ ही उसके घर में शौचालय होना चाहिए। तो इस प्रकार से घर पूरी तरह से एक कंप्लीट पैकेज की तरह दिया जाए, जो मैं ये कहूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में तो सुविधा संपन्न घर है, ये मकान नहीं है। इसीलिए कन्वर्जेंस इस योजना की सफलता की एक प्रमुख कुंजी है।
यानी सिर्फ एक मंत्रालय ही ना दे घर इसमें, बल्कि और भी मंत्रालयों का सहयोग लिया जाए ताकि उस मकान को एक घर बनाया जा सके।
इसीलिए ये प्रयास सार्थक क्यों है, क्योंकि इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय ही केवल इसमें सम्मिलित नहीं है, इसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के समन्वय से हम लोग गैस कनेक्शन दे रहे हैं, विद्युत मंत्रालय के समन्वय से हम बिजली कनेक्शन दे रहे हैं, जल शक्ति मंत्रालय के समन्वय से हम उसे टॉयलेट दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो हम लोग हमारा नवीनीकरण मंत्रालय है, MNRE मंत्रालय जिसे कहते हैं, उसके समन्वय से हम लोग अब जो प्रधानमंत्री जी ने अभी नई योजना लॉन्च की है PM मुफ्त घर बिजली योजना, उसके समन्वय से हम उसके सोलर रूफटॉप देने का भी काम कर रहे हैं, जिसको हम एक सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि आत्मा जो है वो गांवों की और सुविधाएं शहर की। तो जो हमारा घर है भले वो ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहा है, लेकिन उसमें सभी सुविधाएं सम्मिलित हैं और मुहैया कराई जा रही है।
जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया सरकार की नई योजना का कि अब रूफ टॉप, आपकी छत पर सूर्य की रोशनी से अब आप अपने यहाँ पे रात में भी बिजली प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक जिक्र करना चाहेंगे एक और बहुत ही बड़े कदम का, जिसने भारत में कैसे सरकारी योजनाएं कार्यान्वित हों, कैसे उनका लाभ लोगों तक पहुंचे, उसे पूरी तरह से बदल दिया है। वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी रैली करते हैं और उसमें एक क्लिक करते ही सभी जो हमारे लाभार्थी हैं उनके खातों में पैसा पहुंच जाता है। तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, इसने कैसे पूरी तरह से हमारे देश में योजनाएं लागू होती हैं उसे कैसे बदल दिया है?
यही जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पद्धति है, यह प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रारंभ से ही इस योजना का अंग है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जब हम उस किसी लाभार्थी का घर स्वीकृत करते हैं तो हम उसका बैंक अकाउंट लेते हैं, हम उसका आधार नंबर भी लेते हैं और हम उसका मोबाइल नंबर भी लेते हैं। तो हम उसको पैसा उसके सीधे अकाउंट में जारी किया जाता है, कोई चेक नहीं, कोई कैश नहीं, कुछ नहीं। तो यह योजना के प्रारंभ से ही है। दूसरा, जब हम उसको किस्त जारी करते हैं तो हम उसको SMS के माध्यम से उसके मोबाइल नंबर पर यह सूचना भी देते हैं कि आपका घर स्वीकृत हो गया, आपके घर को पहली किस्त जारी की गई, आप दूसरी किस्त अब आपको जारी की गई है। और ये सारी किस्तें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 किस्तों में सामान्यतया पैसा जारी किया जाता है और ये तीनों किस्तें घर के निर्माण की स्थिति से लिंक है कि पहली किस्त कब दी जाएगी, दूसरी किस्त कब दी जाएगी, तीसरी किस्त कब दी जाएगी, ये राज्य निर्धारित करते हैं, हमको सूचित करते हैं। और DBT के साथ मैं एक चीज और बता दूं, क्यों ये योजना लोगों के साथ आसानी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारे पास इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केवल एक ही MIS सिस्टम है, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और इसका MIS है आवास सॉफ्ट, जिसको पंचायत से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक सभी लोग उसको यूज करते हैं और उसी के माध्यम से पैसा रिलीज किया जाता है, उसी के माध्यम से उनको स्वीकृति होती है, उसी के माध्यम से उनको सारी जानकारी है कि किसको कब घर मिलेगा। तो DBT जो है वो एक प्रमुख अंग है इस योजना के सफलता का।
ग्रामीण क्षेत्रों में किसे किसे पक्के घर मिलेंगे, इसका चयन कैसे किया गया, अगर आप इसके बारे में बता सकें?
आपको मैं सभी अपने श्रोताओं को यह अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 2011 में एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना किया था। इस जाति जनगणना में अनेक क्षेत्रों पर, अनेक मानकों पर जो है वो डेटा एकत्रित किए गए थे। उसमें एक था कि किसके पास घर नहीं है। तो जब यह पूरी तरह से एक तरह से जनगणना थी, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में यह किया गया 2011 में, जब ये किया गया और इसकी रिपोर्ट 2015 में जो है वो प्रकाशित हुई। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 से शुरू की गई, तो सरकार ने यह निर्णय लिया, भारत सरकार ने, कि ये जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना का आंकड़ा है इसको अब प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में इसका प्रयोग किया जाए। जब हमारे पास ये आंकड़ा है तो ये चिन्हित किया गया कि कितने लोग हैं जो उस समय कच्चे घरों में रह रहे हैं। मैं आपकी सूचना के लिए बताऊं कि उस समय जो 17 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवार थे, उनमें से लगभग 4.3 करोड़ के आसपास लोग थे जो कच्चे घरों में रह रहे थे, 2 कमरों के कच्चे घरों तक। सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम जो 2 कमरों के कच्चे घरों में रह रहे हैं, इनको हम घर दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया। फिर ये हुआ कि चूंकि आंकड़ा 2011 का है, योजना 2016 में शुरू करने जा रहे हैं, तो 2015 में जब ये निर्णय हुआ कि इस सूची को, पहले ये पूरी सूची डिजिटाइज की गई और डिजिटाइज करने के बाद पंचायत वाइज, ब्लॉक वाइज, जिला वाइज, राज्य वाइज सूची तैयार की गई। सभी पंचायतों से, सब सरकार से शेयर करके ये कहा गया कि इसका भौतिक सत्यापन करा लिया जाए। जब राज्यों ने भौतिक सत्यापन कराया तो ये जो 4.3 करोड़ की सूची थी, यह जो है वो घटके 2.95 करोड़ आ गई। इस प्रकार से यह योजना के जो आवास योजना का जो लक्ष्य है हाउसिंग फॉर ऑल के अंतर्गत, वह 2.95 करोड़ इसी आधार पर निर्धारित किया गया। तो सूची चिन्हित हो गई, एक तो हो गया जिनके पास कच्चे घर हैं, दूसरा इनकम क्राइटेरिया भी रखी गई। मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी जब नए जो सरकार ने निर्णय लिया है कि 2 करोड़ अतिरिक्त घर और बनाए जाएंगे अगले 5 सालों में, उनमें इन मानदंडों में शिथिलता दी गई है जिसके बेसिस पर एक फ्रेश सर्वे किया जाएगा।
ये जो आपने कहा कि सरकार ने कुछ नए मानदंड बनाए हैं, तो ये क्या बात मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की है, जब कैबिनेट बैठी और पहला जो फैसला हुआ वो यही कि 3 करोड़ और घर अब इस योजना के तहत बनाए जाएंगे?
वर्तमान भारत सरकार के की पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। आपको मैं ये भी बताऊं कि जो अंतरिम बजट था सरकार का, उसमें भी था कि जो है वो 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, लेकिन कैबिनेट ने जो पहली बैठक में जो अपने संकल्प को दिया, उसके बाद हम लोगों ने 3 करोड़ जो नए घर बनाए जाएंगे पूरे देश में, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में, जो बनाए जाएंगे, जो अभी प्रतीक्षा सूची में हैं, उन्हें तो घर मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत से लोग अभी हैं जो पात्र परिवार हैं, जो गांव में रह रहे हैं, जिनके पास घर नहीं होगा, या परिवार के बंटने के कारण या अन्य कारणों से उनको जो है वो पात्र होंगे। तो जो नया सर्वे किया जाएगा उसमें मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, 4-5 प्रमुख परिवर्तन है। जो भूमि की के मानदंड थे, अब एकदम सरलीकरण कर दिया गया है। तो ये जो मानदंड परिवर्तित किए गए हैं, ये है समाज के बदलते स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए किए गए हैं, जिससे जो पात्र परिवार हों उनको जो है ये योजना का लाभ मिले।
हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले ये मानदंड जो शिथिल होंगे या ये सर्वे जो होगा वो कब से होगा, और इसके लिए लोगों को क्या इंतजार करना चाहिए या वो अपनी क्या तैयारियां रखें।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, पहली सूची थी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आधारित जो 2011 की थी। उसके बाद जब हमने इसको पूरी तरह से संतृप्त कर लिया तो एक नया सर्वे हुआ था 2018 में, जिसको आवास प्लस सूची 2018 कहते हैं। वह भी 22 से ज्यादा राज्यों की जो है वो सूची संतृप्त हो चुकी है। तो लगभग जो 10-12 राज्यों में अभी लोग प्रतीक्षा सूची में हैं, उनको हम कवर करेंगे जो प्रतीक्षा सूची। अब सरकार ने जो निर्णय लिया है कि आवास प्लस 2024 जो मोबाइल ऐप, जिसका कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भुवनेश्वर से 17 सितंबर 2024 को लॉन्च किया है, जिसके प्रयोग से करके हम लोग एक नया सर्वे करने जा रहे हैं। जो अभी मैं मानदंडों की बात कर रहा था कि जो मानदंड शिथिल किए गए हैं, तो नए मानदंडों के आधार पर नया सर्वे होगा, जिसको आवास प्लस 2024 सर्वे कहा गया है। कि इस सर्वे में 2 बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, एक तो मानदंडों में शिथिलता की गई है, दूसरा सर्वेयर गांव के प्रत्येक घर जाएगा, सर्वे करेगा, सर्वेयर कौन होगा उसका भी चिन्हीकरण हो चुका है, उसकी भी मैपिंग हो चुकी है हमारा जो मोबाइल ऐप है उसके साथ। तो वो गांव में जाएगा और खुद जो है विजिट करके सर्वे करेगा, फोटोग्राफ लेगा वहां के पुराने घर का, अदर और बाकी सारे डिटेल्स हैं, और इन मानदंडों पर जिनमें मैंने जिक्र किया था वो वेरीफाई करेगा कि इसमें क्या क्या चीज। दूसरा, कभी हम लोगों के पिछले 10 सालों में चूंकि योजना हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं, तो इससे हमको जो अनुभव मिले कि बहुत से लोगों के नाम छूट जाते थे किन्हीं कारणों से, मान लीजिए सर्वेयर की गलती है या किन्हीं कारणों से, तो हमने इस मोबाइल ऐप में इस साल वाले में ये एक प्राविधान किया है जिसे कहा गया है सेल्फ सर्वे, कि आदमी अपना सर्वे स्वयं कर सकता है इस मोबाइल ऐप को, जो आवास प्लस 2024 मोबाइल ऐप है इसका प्रयोग करे, इसको अपने मोबाइल पर अपलोड करे और इसमें अपना आधार नंबर डाले, अपना फोटो डाले और अपना क्रेडेंशियल को सत्यापित करके इसका यूज करके अपना सर्वे कर सकता है। लेकिन सेल्फ सर्वे के केस में एक मोबाइल से केवल एक ही घर का सर्वे किया जाएगा और जो असिस्टेड सर्वे है जो सर्वेयर के द्वारा, उस पे ऐसा कोई नहीं। तो दोनों मोड अवेलेबल हैं, जिससे जो सरकार की मेन है कि कोई भी पात्र परिवार घर से वंचित न रहे, क्योंकि अब योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं पूरी तरह से सेचुरेशन मोड में। तो सेचुरेशन मोड में रख करके मंशा ये है सरकार की कि अगले 5 वर्षों में पूरी तरह से जो हाउसिंग फॉर ऑल का सपना है उसे सच मायने में पूरा किया जाए।
और हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जो ज्यादा जरूरतमंद, जिसे हम कह सकते हैं, हम बात कर रहे हैं आरक्षण की, क्या इस योजना में ऐसा कोई प्रावधान है जो समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान करता हो?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जब ये योजना 16 में शुरू हुई थी, उस योजना के दिशा निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख है कि कम से कम न्यूनतम 60% लक्ष्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए रिजर्व है। और मैं आपके जानकारी के लिए बताऊं कि जो 2,67,00,000 घर हमने पिछले 8 सालों में बनाए हैं, उनमें से लगभग 1.5 करोड़ घर जो स्वीकृत हुए हैं वह इन्हीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के लिए है। तो ये इस योजना का जो कहते हैं ना सोशल इंक्लूजन, सोशल इक्विटी, इस योजना की प्रमुख विशेषता है।
हम चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। गया जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इस विषय पर बात की, बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 8 वर्ष पूर्ण होने पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप महानिदेशक गया प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।